ठीक है, ले
जाओ। الحمد لله وكفى والسلام على الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا سيدنا فلنا. تو اس کلاس میں ہم نے حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ بیانات امور خانداری میں حسن انتظام میں سے پڑھتے ہیں، اور ان میں ہم نے سب سے پہلے جو ہے جو درس پڑھا تھا اپنی کلاس میں، وہ تھا امور خانداری یا ہاؤس ہولڈ مینجمنٹ. اس کا ٹائٹل بلکہ کیا تھا؟ ہاؤس ہولڈ میں انتظام خانہ، اردو میں انتظام خانہ تھا، انگریزی میں ہاؤس ہولڈ مینجمنٹ تھا. اس کے اندر بہت ہی اچھی اچھی اور کام کی باتیں ہم نے پڑھی تھیں اور اس کو فردر ایکسپلین کرنے کی کوشش کری تھی. پھر اس کے بعد ہم نے ریلیشن شپ مینجمنٹ کا ٹاپک پڑھنا شروع کر دیا تھا، اور اس میں ہم تقریباً آخر تک ہم پہنچ گئے تھے. اب جو آپ کے سامنے پیج ڈسپلیڈ ہے، پیج نمبر 150، تو اس کے اوپر ہم ہیں، یہیں سے ہم پڑھتے ہیں، اس کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں آج، اور پھر اگر موقع ملا تو پھر اس کی کچھ سمری کر لیں گے انشاءاللہ. پھر اس کے بعد اگلا موضوع جو ہے وہ اگلے ہفتے انشاءاللہ شروع کریں گے. تو ریلیشن شپ مینجمنٹ میں آخری عنوان یا ہیڈنگ جو حضرت نے بنائی تھی، یا حضرت کے جو بیانات تو بغیر ہیڈنگز کے ہوتے ہیں، لیکن جب ان کو کتابی شکل میں کمپائل کیا جاتا ہے تو پھر کتاب لکھنے والے جو ہیں نا، پھر وہ ہیڈنگز ڈال دیتے ہیں. تو انہوں نے ہیڈنگ ڈالی کہ نیک اولاد کے لیے خود نیک بنے، نیک اولاد کے لیے خود نیک بنے. کیونکہ ابھی جو جو بات ہو رہی تھی وہ ریلیشن شپ مینجمنٹ میں اولاد کے ساتھ ریلیشن شپ مینجمنٹ، بچوں کے ساتھ، اپنے ہی اولاد کے ساتھ، اپنے ہی بچوں کے ساتھ. تو اس میں جو دیگر باتیں کری تھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، اسے آخری تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ نیک اولاد کے لیے خود نیک بنے. تو انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن اس طرح سے کیا کہ چلڈرن نیڈ پائس پیرنٹس. ٹھیک ہے، چلڈرن نیڈ پائس پیرنٹس. اسپیلنگ مسٹیک ہو گئی، اب جنہوں نے اس کو لکھا تو انہوں نے پوئز کو کوئی لفظ یہاں پہ لکھ دیا، لیکن وہ پوئز نہیں، اس کو آپ ٹھیک کر لیں، وہ ہے پائس، PIOUS، یعنی نیک، پرہیزگار. تو اس کی ایکسپلینیشن میں آگے فرماتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ماں باپ خود تو نیک نہ ہوں اور بچے حافظ بن جائیں اور عالم بن جائیں. حافظ عالم سے حضرت کے یہاں پہ مراد یہ ہے کہ نیک بن جائیں، یعنی دین کی حفاظت کرنے والے بن جائیں. حافظ سے مراد یہاں پر صرف قرآن مجید کو رٹ لینا وہ نہیں ہے، بلکہ تب رٹ لینا اچھی بات ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے. قرآن مجید کو یاد کر لینا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے الفاظ کی حفاظت بھی اسی طریقے سے ہی کروائی ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو توفیق دیتا ہے، بچوں کو توفیق دیتا ہے کہ وہ قرآن مجید کے الفاظ کو یاد کر لیتے ہیں. تو یہ بہت نیکی کی بات ہے، لیکن اگر پھر قرآن مجید کو حفظ کرنے کے بعد اس کے احکامات کی حفاظت نہیں کری، دین کے احکامات کی حفاظت نہیں کری، تو پھر قرآن مجید کا حافظ بننا نیکی نہیں کہلائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک سٹیج ہے، یہ ایک سٹیپ ہے قرآن مجید کا حفظ کرنا، لیکن اٹ ڈزنٹ اینڈ ہیئر. ٹھیک ہے، نیک بننا جو ہے وہ حافظ بننے کے اوپر ختم نہیں ہو جاتا، مکمل نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کے بعد اس کے احکامات کی حفاظت کرنا بھی اس کے ساتھ اس کا نیکسٹ سٹیج ہے، اس کے بعد بات مکمل ہوگی. ٹھیک ہے، تو نیک اور حافظ بن جانا، عالم بن جانا، عالم بن جانے کا بھی یہی مطلب ہے کہ قرآن مجید کے معانی کو آپ نے سمجھ لیا، پڑھ لیا. ٹھیک ہے، لیکن معانی، یعنی کیونکہ عالم دین جو ہوتا ہے یہ صرف الفاظ کو رٹتا نہیں ہے، अक्सर तो आलम दीन अल्फाज को बिल्कुल भी नहीं रटते, ठीक है, लेकिन जो कुरान मजीद के अंदर अहकामात हैं उनको समझ लेते हैं, ठीक है, और तफसीर के साथ जाके समझ लेते हैं, इसी वजह से उनको आलम दीन कहा जाता है। तो उनके ऊपर भी यही चीज फर्ज है कि भाई अगला स्टेज जो है ना वो इनके ऊपर अमल करना, तो अमल किए बगैर नेक नहीं बन सकते हैं। तो बहरहाल मुराद यहाँ पर नेक बनना ही है। तो फरमाया कि माँ बाप खुद नेक ना हो और बच्चे जो हैं वो नेक बन जाएं, तो ये तो नहीं हो सकता। माँ बाप खुद भी नेक बने तो फिर औलाद भी नेक बनती है, ठीक है, यानी ये एक तरह से माँ बाप को नेक बनने के लिए इनकरेज करना क्या एक इंसेंटिव है, वन ऑफ द इंसेंटिव्स, ठीक है, कि भाई आप नेक बनेंगे तो आपकी औलाद भी नेक बनेगी, ठीक है। ये कोई जरूरी नहीं है कि माँ बाप नेक बन जाए तो औलाद भी नेक बन जाए, ये जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन आम तौर पे ऐसा, क्योंकि माहौल का असर होता है। अब माँ बाप नेक होंगे तो घर के अंदर भी नेकी का माहौल होगा, तो नेकी के माहौल के अंदर बच्चों के लिए भी फिर गुनाहों से बचना आसान हो जाएगा, नमाज पढ़ना आसान हो जाएगा, देखिए ये काम करने आसान हो जाएंगे, ठीक है। तो ये उमूमी तौर पर ऐसे होता है, तो इसी वजह से इसको ऐसे ही कह दिया जाता है कि माँ बाप नेक बनेंगे तो औलाद भी नेक बनेगी, ठीक है, लेकिन ऐसा कोई शर्त नहीं है कि माँ बाप नेक बने तो औलाद लाजमन नेक बने, ऐसी कोई शर्त नहीं है, ठीक है। और दूसरी तरफ ये भी कि ये भी कोई शर्त नहीं है कि माँ बाप अगर नेक ना हो तो औलाद नेक नहीं बन सकती, ये भी कोई शर्त नहीं है, ठीक है, कि माँ बाप नेक नहीं है तो औलाद अब नेक बन ही नहीं सकती, ये भी कोई शर्त नहीं है, ठीक है। बड़े बड़े मुशरिकीन, बड़े बड़े काफिरीन, बड़े बड़े जो है मुखालिफीन, उनकी औलादें जो है वो नेक बन गई, सहाबाए कराम, सबसे पहले सहाबाए कराम, राइट, उनके वालिदैन जो थे अक्सर सहाबाए कराम के वालिदैन कोई नेक नहीं थे, ठीक है, जैद बिन सईद बिन जैद, ये तो एक एक्सेप्शनल मिसाल है ना, सईद बिन जैद, ठीक है, कि उनके वालिद जो थे जैद, वो जमाने जाहिलियत में भी नेक ही थे, लेकिन बाकियों का तो ऐसा मामला उमूमी तौर पर नहीं था ना, ठीक है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिसाल माशाल्लाह इन्होंने यहाँ पे लिख दी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप का तो कुरान मजीद में जिक्र आता है ना कि वो तो बुत परस्त था, बल्कि बुतों का जो है वो मुजावर था, लेकिन माहौल का चूंकि असर होता है, तो इस वजह से जो घर का माहौल बुरा होता है तो फिर औलाद भी जो है वो फिर उस माहौल का असर लेती है और फिर वो नेक नहीं बनती, और उसी तरीके से घर का माहौल नेक होता है तो औलाद भी उसका असर लेती है और आमतौर पर औलाद भी नेक ही बनती है। फिर अल्लाह ताला जो है वो बहुत वाकई जो अल्लाह ताला के मुकर्रब बंदे होते हैं, फिर अल्लाह ताला उनका लिहाज भी फरमाते हैं और उनके औलाद को नेकी की तौफीक भी देते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें अपनी जगह पर, अपनी अपनी जगह पर ये सारी बातें जो है ना वो मौजूद हैं, ऐसा नहीं है कि एक है दूसरी नहीं है, दूसरी है तीसरी नहीं है, तीसरी है चौथी नहीं है, ऐसा नहीं है। तो दिस इज लाइफ, ठीक है, लाइफ में ये सारे फ्लेवर्स मौजूद होते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ रही होगी कि आज इस क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन ये तवक्को करना ना कि भाई मैंने तो नेक बनना नहीं है, अब ये उस उन वालिदैन की बात हो रही है कि जिन तक जो है वो नेकी का मैसेज पहुंच रहा है, लोग उनको नसीहत कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उनको ये बात की जा रही है ना कि भाई तुम किस किस्म के इंसान हो कि तुम कह रहे हो कि जी मैंने तो नेक नहीं बनना, लेकिन एट द सेम टाइम तुम्हारी तवक्को अपनी औलाद से है कि वो नेक बन जाए, तो ये इस किस्म की बेवकूफाना तवक्कोआत ना रखा करो तुम, ये बात हो रही है असल में यहाँ, ठीक है। तो ये भी जहन में रखें कि एज यू सो सो शैल यू रीप, ठीक है, एज यू सो, यानी जैसा तुम बीज बोओगे ना तो वैसे ही फिर तुम फल भी काटोगे, ये तो नहीं हो सकता ना कि तुमने जो है वो किसी कड़वे फल का बीज बोया जमीन में और उसमें से जो पौधा निकले तो वो जो है वो माशाल्लाह आम का पौधा निकल जाए, लंगड़े आम का पौधा निकल जाए उसके अंदर से, या उसके अंदर से जो है वो माशाल्लाह संतरे का पौधा निकल जाए, ऑरेंज का पौधा निकल जाए, ऐसा तो नहीं होगा ना, भाई आपने कड़वा बीज बोया तो उसमें से कड़वे कड़वे ही दरख्त निकलेगा, ठीक है। तो अब ये तवक्को रखना कि नहीं, बीज तो मैंने कड़वा बोया लेकिन निकले उसके अंदर से मीठा, ठीक है। और उसी तरीके से दूसरी तरफ भी कि इंसान जो है वो मेहनत तो करे, अपने ऊपर नेक बनने की मेहनत करे और औलाद के ऊपर भी नेक बनने की मेहनत करे, लेकिन बदगुमानी रखे कि नहीं मेरी औलाद नेक नहीं बनेगी। तो भाई आपने अगर आम का बीज बोया है, वाकई आम का बीज बोया है, तो उसमें से आम ही का पौधा निकलेगा ना। अब आप बदगुमान मत हो कि नहीं आम का बीज बोया उसके अंदर से जो है वो क्या कहते हैं कोई कड़वा फल का नाम है वो निकल आएगा उसके अंदर से। तो ऐसे बदगुमानी ना करें, ठीक है। अल्लाह ताला से गुमान ही रखें कि अल्लाह ताला ने आम के बीज में आम का ही पौधा रखा है, ठीक है। तो एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है। जैसी करनी वैसी भरनी, इसको मुकम्मल भी कर लेते हैं कि आगे इसका अगला मिसरा क्या है कि ना माने तो करके देख, ठीक है। ये तो एक थियोरेटिकल स्टेटमेंट आपको बताई जा रही है कि जैसी करनी वैसी भरनी। अब आप अगर इसको नहीं मानते तो फिर आप खुद करके देख लें, ना माने तो करके देख, जन्नत भी है दोजख भी है, ना माने तो मर के देख, ठीक है। मर के खुद देख लोगे, खुद नजर आ जाएगा तुम्हें कि वाकई जन्नत और दोजख मौजूद है। अभी तो तुम्हें मरने से पहले बात को मानना पड़ेगा, मानोगे तो फायदा है, नहीं मानोगे तो फिर मर के बाद तो मरने के बाद तो तुम्हें फिर ये सब कुछ नजर आ ही जाएगा, ठीक है। तो असल चीज तो ईमान वाले के लिए जन्नत और दोजख की ही फिक्र है, और मरने का मामला तो ये है कि वो हमारे इख्तियार में तो नहीं है कि हमने कब मरना है, ठीक है। वो तो जिस वक्त मौत आएगी उसी वक्त ही मरना होगा। इदा जाआ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, कि जब अजल का वक्त आ जाएगा ना, तो फिर उसके बाद ना उसको कोई आगे कर सकता है ना उसको कोई पीछे कर सकता है। ये नहीं कि अच्छा मौत नजर आ रही है कि हाँ भाई अब मैं मरने वाला हूं तो अब मैं अभी मर जाऊं, 10 मिनट बाद ना मरूं मैं बल्कि 10 मिनट पहले मर जाऊं, नहीं आप ये भी नहीं कर सकते। और ना आप ये कर सकते हैं कि आप को अगर 10 मिनट में मौत आएगी तो फिर आप कहें कि नहीं मैं 20 मिनट में मरूंगा, नहीं, बल्कि जिस वक्त मौत ने आना है वो उसी वक्त आएगी। तो आगे पीछे नहीं किया जा सकता, कोई ना खुद कर सकता है बंदा मरने वाला, और ना कोई दूसरा उसको उसकी मौत को आगे पीछे कर सकता है। तो 70, 80, 90 साल की मौत आना, ये तो अजम्पशन है ना हमारी कि हमारी मौत 70 साल के बाद आएगी, हमारी मौत 90 साल के बाद आएगी, ये तो अजम्पशन है। हकीकत तो इसके अंदर कोई भी नहीं है, मौत तो अभी आ सकती है इसी वक्त, कल भी आ सकती है, परसों भी आ सकती है। नहीं, कल जो है वो खबरें ऐसी थी अगर किसी ने अखबार पढ़ा हो या किसी ने अखबार सुना हो तो कल की ऐसी खबरें थी कि जैसे कल मौत आने वाली है। कल की खबरें ऐसी थी ना कि वो उसने उधर से अटैक कर देना है, इसने इधर से अटैक कर देना है। खबरों की वैसे तो कोई हकीकत नहीं होती है, और हमें उसके ऊपर एतमाद करने से अल्लाह ताला ने मना कर दिया, इन जाकुम फासिकुन बेनबइन फतबयनु, कि अगर फासिक लोग तुम्हारे पास खबर लेकर के आए, यानी CNN, फॉक्स न्यूज, सोशल मीडिया के, हैं ये सब अगर खबर लेकर के आए तो इनके ऊपर तुम यकीन ना करो, खुद ही तहकीक करो, ठीक है ना। तहकीक के बगैर यकीन ना करना, और अगर तुम तहकीक नहीं कर सकते हो तो फिर जस्ट इग्नोर इट, ठीक है, मतलब डोंट ट्रस्ट इट एक्चुअली, नॉट जस्ट इग्नोर इट, बेशक नहीं लेकिन डोंट ट्रस्ट इट। तो कल तो खबर आने वाली आ रही थी कि भाई उसने कर देना है, पर इसने भी कर देना है, और फिर उसके बाद फिर जहां पे आकर के गिरेगा ऊपर से आके ना, वो आसमान से फिर आफत आती है ना, वो बैलिस्टिक मिसाइल किसको कहते हैं, जो आसमान से गिरता है, आम मिसाइल नहीं होता जो कि यूं आकर के यूं चलता 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 आराम आराम से चलता 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 जो है वो दूसरे मुल्क में आके गिरता है, नहीं, बैलिस्टिक मिसाइल वो होता है जो कि आसमान पे ट्रैवल करता है और वो नजर नहीं आता बिल्कुल भी, ठीक है, स्पेस में ट्रैवल करता है, और वो स्पेस से ट्रैवल करके फिर उसके बाद जहां पे उसको गिरना होता है ना, वो वहां पर वो स्पेस से जो है वो दुनिया की एटमोस्फेयर में दाखिल होता है, और फिर वहां से वो नीचे आना शुरू होता है, और वो फिर ग्रेविटी की स्पीड के साथ जो है ना वो अपनी स्पीड भी बढ़ाता है। अब वो इंटरसेप्ट तो आजकल तमाशे हैं, ये सब तो खबरें हैं ना, ये सब तो अब आपको क्या पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कुछ पता नहीं है, लेकिन उसका तरीका यही होता है कि वो ऊपर से नीचे गिरता है, और वो जहां पे गिरता है तो फिर वहां पे बहुत ज्यादा तबाही मचाता है, फिर वहां पे कोई तमीज नहीं होती कि बच्चे को मारना है, बड़े को नहीं मारना, बड़े को मारना है, बच्चे को नहीं मारना, मर्द को मारना है, औरत को नहीं मारना है, किसी को नहीं, बस सब सब गए फिर उसके बाद। ठीक है, तो मौत की तो ये मामला है, ठीक है, मौत का तो ये मामला है, वो बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए से आए या खुद ही पानी अटक जाए के गले के अंदर और बस खलास इस दुनिया से अगली दुनिया, ठीक है, गले में हड्डी अटकी, इधर से उधर का सफर शुरू, ठीक है। तो ये हमारी मौत की हकीकत है, लेकिन हम ऐसे जिंदगी गुजारते हैं कि जी सबने मर जाना है सिवाय मेरे, ठीक है ना, वो भी मर गई, वो भी मर गई, वो भी मर गई, बच्ची भी मर गई, बड़ी भी मर गई, बूढ़ी भी मर गई, जवान भी मर गई, मैंने नहीं मरना, मैंने तो यहाँ पे पता नहीं कोई 300 साल की उम्र गुजारनी है, फिर उसके बाद मुझसे पूछा जाएगा कि अब आप तैयार हैं जाने के लिए, हैं, जिब्राइल अलैहि सलाम आएंगे हजरत इज़राइल अलैहि सलाम के साथ, हैं, और हमसे पूछेंगे कि अब आप तैयार हैं जाने के लिए, फिर हम उनको इजाजत देंगे, तब वो हमें लेकर के जाएंगे, और बाकी लोगों को जो है ना उनकी मर्जी के बगैर लेके चले गए, किसी को जवानी में, किसी को बचपन में। तो ये तो धोखे हैं जो के हमें अपने नफ्स की वजह से लगे हुए हैं और शैतान ने जो है वो हमें लगा दिए हैं। भाई हमने जन्नत की खातिर जीना है, हकीकत क्या है, इस दुनिया का कुछ पता नहीं, इस जिंदगी का कुछ पता नहीं, हमने तो जन्नत की खातिर जीना है। क्यों जन्नत की खातिर जीना है, इसलिए कि सादिक और अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के बारे में बताया, ठीक है ना, कुरान अजीम शान सादिक और अमीन के वास्ते से हमें मिला और उसने हमें जन्नत के बारे में बताया, ठीक है। अब जन्नत के बारे में आपको नहीं पता चल रहा तो भाई आप खुद क्यों नहीं पढ़ते, हर काम आपको क्लास में पढ़ाया जाए, हर काम आपको क्लास में बताया जाए, तो खुद क्यों नहीं पढ़ती, नहीं पढ़ती तो आपका कसूर है, यू आर लूजिंग आउट, यू आर गोइंग टू लूज, यू आर गोइंग टू फेल, ठीक है ना। तो भाई उसका इल्म हासिल करें ताकि जन्नत का कुछ शौक भी बढ़े, हर चीज तो नहीं क्लास में पढ़ाई जा सकती है ना, इरादा तो किया हुआ है बहुत सारी चीजों का, हजार चीजों का इरादा किया हुआ है भाई, लेकिन क्या क्या आपको पढ़ाए हैं, खुद भी पढ़े ना जा करके, कुरान मजीद में भी जन्नत का तस्करा है, तफसीर के अंदर भी जो है वो जन्नत के हालात मौजूद हैं, हदीस के अंदर भी जन्नत के हालात मौजूद हैं, कुछ पढ़ेंगे तो कुछ शौक भी पैदा होगा जन्नत के बारे में, ठीक है। तो भाई जन्नत के लिए जीना है, इस दुनिया के लिए नहीं, दुनिया में तमाशे नहीं करने, दुनिया के अंदर ख्वाहिशात पूरी होने की जगह अल्लाह ने बनाया ही नहीं, जन्नत के लिए बनाया यार, ना माने तो मर के देख ले, तो ये सब पता चल जाएगा जब हकीकत खुलेगी। तो बहरहाल यही है नेकी, नेकी की ये डेफिनेशन, नेकी का की डेफिनेशन जो है ना, जो कि काफिरों ने हमें समझा दी है कि बी नाइस टू अदर्स सो दैट दे आर नाइस टू यू, दिस इज नॉट नेकी, बी नाइस टू अदर्स सो दैट दे आर नाइस टू यू, और बी नाइस टू अदर्स सो दैट यू कैन बी प्रेज्ड, लोग तुम्हारी तारीफ करें, लोग तुम्हें अच्छा समझें, अच्छे मैनरिज्म्स इख्तियार करो, अच्छे जो है वो लोगों के साथ रख रखाव रखो और ये करो और वो करो, ताकि जो है वो लोग तुम्हारे लिए तुम्हें अच्छा समझें और लोग तुम्हारे साथ अच्छे रहें, ये नेकी नहीं है, ये नेकी नहीं है, ये नेकी नहीं है, नेकी तो वो है जो कि जन्नत के लिए की जाए, क्योंकि जन्नत ही अल्लाह की रजा की जगह, ये है नेकी, इसके अलावा नेकी नहीं है, वो लोगों ने अपनी डेफिनेशन बनाई हुई है कि अपना ये इसको नेकी बनाया हुआ, लेकिन वो नेकी है नहीं, ठीक है। अल्लाह ताला का कुरान इस बारे में बिल्कुल क्लियर है, अल्लाह ताला बिल्कुल क्लियर है इस मामले के अंदर कि इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमा लिइम्रिइम मा नवा, कि तुम जिस चीज की नियत करोगे ना तुम्हें वही मिलेगा, बंदा जिस चीज के लिए करता है ना उसको वही मिलता है, दुनिया की तुम प्रेस के लिए नेकी करोगे, दुनिया की प्रेस के लिए खुश अखलाकी करोगे, चैरिटी करोगे, फलाना करोगे ढिमकाना, तुम्हें वो दे देंगे, हम जन्नत में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ठेंगा भी नहीं मिलेगा वहां पर तुम्हें, ठीक है। तो अल्लाह की खातिर नेकी करनी है और जन्नत की खातिर, जन्नत की खातिर नेकी करनी है, यही है, इसको आखिरत का तस्वुर भी कहते हैं, तब नेक बनेंगे और तब फिर सवाब मिलेगा वरना कुछ नहीं मिलेगा। तो नेक औलाद के लिए खुद नेक बने का मतलब ये है कि आखिरत के लिए जीना शुरू कर, आखिरत के लिए जीना शुरू कर, एक्सपेक्टेशंस रखना, वो मेरे साथ ये कर ले और वो मेरे साथ, उसने ये क्यों नहीं किया और उसने ये कर दिया तो इस वजह से मैं उसके साथ अच्छा करूंगी, उसने मेरे साथ ये नहीं किया इस वजह से मैं उसके साथ बुरा करूंगी, ये नेकी नहीं है, बिल्कुल एब्सोल्युटली ट्रैश, एब्सोल्यूट ट्रैश, दिस इज वर्थ गोइंग इन द ट्रैश बिन, ये वाले आमाल जो है ना ये कचरे में डाल देने के काबिल आमाल है, इनके ऊपर कुछ भी नहीं मिलता। नेकी कर, नेकी करने का ये मतलब है। बाकी उसके बाद प्रोसेस कैसे करना है, तरीका क्या है नेकी करने का, वो फिर नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत से, सहाबा कराम की सुन्नतों से, नेक जो हमारे बुजुर्ग गुजरे हैं, नेक मर्द औरतें गुजरी हैं दुनिया में, उनके जो अफाल और अमाल होते हैं वो तरीका है नेकी करने, उनसे हमें नेकी करने का तरीका सीखना है। ठीक है, तो वॉट एवर गोज अराउंड कम्स अराउंड। दुनिया की खातिर करोगे तो दुनिया में तुम्हें कुछ ना कुछ ठेंगा फेंगा टाइप की चीज मिल जाएगी, आखिरत में कुछ भी नहीं मिलेगा। आखिरत के लिए करोगे तो आखिरत तो मिलेगी मिलेगी, अल्लाह ताला दुनिया में भी कुछ दे देंगे, कम से कम दिल का इत्मीनान और सुकून तो दे ही देंगे। तो फरमाया कि जैसा आप उनके साथ ताल्लुक रखेंगी वो बच्चे आपके साथ वैसा ही ताल्लुक रखेंगे। अब एक अजीब कहानी, अजर जी तो पढ़ते रहते थे ना बहुत, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने पढ़ने का मौका दिया, तौफीक भी दी, पढ़ने का मिजाज भी दिया, किताबें तो बहुत एविड रीडर थे। जब अल जी की शादी हुई, अल जी ने खुद वाकया सुनाया ना, तो हम कोई ये नहीं सुना रहे ना अपनी तरफ से, अल जी ने खुद वाकया सुनाया तो उसको आपके सामने नकल कर रहे हैं कि जब फरमाया कि मेरी जब शादी हुई ना तो अगले दिन जो है वो अपनी लाइब्रेरी में बैठ के जा करके, अल जी का घर के अंदर एक कमरा था, उसके अंदर किताबें किताबें भरी हुई थी, तो बैठ करके उसके अंदर हमने एज यूजुअल किताबें पढ़नी शुरू कर दी। तो बेगम साहिबा आई और आकर के ना वो चारों तरफ देखना शुरू हो गई दीवार के ऊपर किताबें। तो मैं जी कैसी हैं आप, कैसे आना हुआ, क्या देख रही हैं आप? तो अम्मा जान फरमाने लगी कि मैं ये देख रही हूं कि दूसरी औरतों की तो एक दो या तीन सौकने होती हैं, एक सौगन होती है या दो सौगन होती है, तीन सौगन होती है, क्योंकि चार शादियों से ज्यादा की इजाजत नहीं है, ठीक है, लेकिन मेरी तो इतनी सारी सौगने हैं, जितनी किताबें हैं ये तो सारी की सारी मेरी सौगन है, आप तो आपकी तवज्जो तो इन्हीं के ऊपर मुस्तकिल रहती है, ठीक है, तो मैं आपसे कब बात करूंगी, मैं आपसे क्या। तो उसी ने फरमाया कि फिर हमने किताब बंद करी और बेगम साहब के साथ बातें शुरू कर दी। और फिर क्या होता था, फिर बेगम साहब जैसी जाती थी फिर हम किताब खोल लेते थे, ठीक है, और जैसी आती थी उस वक्त हम किताब बंद कर देते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको खाली इतना बता रहे हैं कि इतना पढ़ने वाला, अब हर बंदा इतना पढ़ने वाला नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत तो हर एक को पढ़ना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इल्म तो हमारी जरूरत है ना बिलाकर। चले, तो आप पढ़ते रहते, कभी कोई वाकया पढ़ रहे हैं, कभी कोई वाकया पढ़ रहे हैं, कभी कोई वाकया बयान कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर भी एक अजीब वाकया खुद ही फरमा रहे हैं, अजीब वाकया, अजीब कहानी सुना, क्योंकि है नॉन मुस्लिम्स की, शायद अमेरिका जैसे किसी मुल्क की ये कहानी है। तो फरमाया कि एक बड़ी उम्र की औरत थी जो काफी अमीर औरत थी, वो एक दफा गाड़ी में सफर कर रही थी कि रास्ते में एक जगह गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया, वो गाड़ी रोक कर खड़ी हो गई। अब वो परेशान थी, जब टायर पंक्चर हो जाता है या कोई और मुसीबत आती है तो फिर उसके बाद परेशानी होती है, वरना तो गाड़ी चलाना बड़ा अच्छा लगता है। तो अब वो परेशान थी कि अकेली औरत थी, टायर बदल कर निकाल कर बदल नहीं सकती थी, उसको मदद की जरूरत थी, ठीक है। तो अब ऐसा तो नहीं होता ना कि ड्राइविंग लाइसेंस मिलने से पहले आपको बॉडी बिल्डिंग का भी लाइसेंस हासिल करना हो ताकि आप टायर खुद बदलने के काबिल हो सकें, ठीक है। ये तो हुकूमत वाले जो ड्राइविंग लाइसेंस देते हैं औरतों को, ठीक है, तो वो उनको इस बात की फिक्र तो नहीं होती ना कि मुसीबत पड़ेगी तो फिर क्या करेंगी, उन्होंने तो दूसरे अपने मकासद हासिल करने होते हैं कि घर से बाहर निकले, जहां जी चाहे जाए, ताकि फिर वो हमारी मर्जी की जिंदगी गुजारे, अल्लाह की मर्जी की जिंदगी गुजारने के बगैर के बजाय, ठीक है, इस वजह से वो ड्राइविंग लाइसेंस देते हैं, है ना, इस वजह से ड्राइविंग लाइसेंस देते हैं ताकि उनकी मर्जी की जिंदगी गुजारे औरत, ठीक है। लेकिन उनको जाहिर है इस बात की परवाह नहीं है कि जब इस पे मुसीबत पड़ेगी, अल्लाह की मर्जी के खिलाफ जाकर के कोई मुसीबत में मुब्तला होगी या इसकी डायरेक्ट गाड़ी का टायर पंक्चर होगा तब क्या होगा। तो इस वजह से हुकूमत वालों ने औरतों के लिए बॉडी बिल्डिंग को प्रीरिक्विजिट नहीं बनाया, ठीक है ना, जैसे होता है ना वो आईसाइट, आईसाइट का जो टेस्ट होता है उसको शर्त बनाया ना ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, ठीक है। तो जब आप ड्राइविंग लाइसेंस लेने जाते हैं ना तो वहां पे आंखों का टेस्ट लिया जाता है कि भाई ये देख भी सकती है, कि ये बंदा जो है मर्द है या औरत है ये देख भी सकता है, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि नजर इसको दूर का नजर नहीं आता तो ये जाकर के गाड़ी जो है ना वो किसी को मार देगा, ठीक है। तो वो आई साइट का तो टेस्ट लेते हैं लेकिन फिजिकल स्ट्रेंथ का तो टेस्ट नहीं लेते ना, कि जब टायर बदलना पड़ेगा तो उसको क्या करेगी, मैं उसको जाने, वो जाने, उसका काम जाने, वो देखा जाएगा, वो खुद ही देखेगी जो भी करना होगा उसको। बहरहाल तो नौ और खातून के साथ यही हुआ कि अब वो परेशान थी, अकेली औरत थी, टायर निकालकर बदल नहीं सकती थी, तो उसको मदद की जरूरत थी। काफी देर गुजर गई मगर कोई मदद करने वाला ना आया। काफी देर के बाद एक आदमी आया और उसने आकर गाड़ी रोकी। वो मोबाइल फोन का जमाना नहीं होगा तो मोबाइल फोन पे, अब तो है ना भाई मोबाइल फोन, अब तो यही इसी तरह से और भी गुनाह के लिए और आसानी हो जाती है कि अब नहीं, अब तो मोबाइल फोन है, अब तो हम कॉल कर लेंगे, ठीक है, ट्रिपल ए वालों को कॉल कर लेंगे, या जो है वो 911 को कॉल कर लेंगे और मदद आ जाएगी। तो इस वजह से फिर मौलवी साहब भी अपना मुंह लेके रह जाते हैं कि यार मैं कैसे समझाऊं उनको, तो ये तो यही समझ रही है कि नहीं, हम फोन कर लूंगी सब मसला हल हो जाएगा। खैर अल्लाह ताला उसको हिदायत दे, उसी को हिदायत मिल सकती है। अच्छा तो इनके पास फोन वो नहीं था, वो जमाना नहीं था, तो कोई ना आया मदद करने के लिए, दूसरे लोग जो है वो अपने अपने काम से जा रहे होते हैं भाई। तो एक बंदा जो था उसने आके गाड़ी रोकी, पूछा कि आप क्यों खड़ी हुई हैं, प्रॉब्लम क्या है। तो उसने बताया कि मेरा टायर पंक्चर हो गया है। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, मैं आपके लिए काम कर देता हूँ, इतनी देर आप मेरी गाड़ी में बैठ जाए ताकि आप एयर कंडीशन में रहें, बाहर गर्मी में खड़ी ना हो। 1 घंटा लगा और उसने इसका टायर बदल दिया। जो भी हुआ 1 घंटा लगा, जितना भी टाइम लगा देते हैं आप, 1 घंटा ही फरमाया। तो गाड़ी को बिल्कुल ठीक ठाक कर दिया, तो उस औरत को इज्जत भी मिली और उसने एहतराम से उसको अपनी गाड़ी में भी बिठाया और उसकी गाड़ी का काम भी कर दिया। जब काम मुकम्मल हो गया तो उस औरत ने उसे पूछा कि अब मैं आपको क्या पे करूं। तो उस आदमी ने मुस्कुरा कर कहा कि मुझे इसके बदले आपसे कुछ पैसे नहीं लेने, बल्कि इट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ माई लाइफ टू हेल्प अदर्स, ये मेरी जिंदगी का मकसद है कि दूसरों की मदद करूं। ये फकरा उस औरत को बहुत अच्छा लगा कि ऐसे भी लोग दुनिया में होते हैं कि जिनकी जिंदगी का ऑब्जेक्टिव होता है कि वो दूसरों की मदद करते हैं। ठीक है, तो ये दूसरों की मदद कभी कोई अल्लाह की खातिर करता है, जन्नत की खातिर करता है, और कभी कोई जो है वो सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए भी करता है कि भाई मुझे अच्छा फील होता है, आई फील गुड अबाउट इट। तो वो सारी बातें पीछे हो चुकी हैं कि किसी और मकसद से करना हमारा दीन नहीं सिखाता, बल्कि हमारा दीन जो है वो अल्लाह और जन्नत की खातिर कोई भी काम करना है वो सिखाता है। तो बहरहाल ये साहब तो बजाहिर मुसलमान थे भी नहीं, मैंने कहा जो इट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ माई लाइफ टू हेल्प अदर्स। अब वो मर तो चला गया, ये औरत अपनी गाड़ी में बैठकर रवाना हुई और आगे रास्ते में जो शहर आता था वहां जाकर रुकी ताकि वहां रेस्टोरेंट से कुछ चीज खा ले, कोई स्नैक्स वगैरह ले ले। क्या लिखा, ये बात मिसाली औरत में भी पढ़ी थी। जी, बिल्कुल आदत है भाई, जब एक बयान में नकल करते हैं तो दूसरे बयान में भी नकल करते हैं, ठीक है, हर मरतबा नई कहाँ से लेकर के आए, ऐसे भी नहीं होता। अच्छा तो फरमाया कि जब ये रेस्टोरेंट में गई ना तो वहां देखा कि एक वेट्रेस थी जो कि प्रेग्नेंट थी, हामिला थी, और लगता था कि उसकी डिलीवरी के दिन भी करीब है, मगर फिर भी वो अपनी ड्यूटी दे रही थी। तो उस वक्त तो औरत की तबीयत ऐसी नहीं होती कि वो बाकायदा जॉब पर आए और ड्यूटी दे वगैरह, तो उस वक्त तो छुट्टी ले ली जाती है या दे दी जाती है, तो लेकिन ये ड्यूटी पर थी। तो उस बूढ़ी औरत ने उससे बातचीत की तो उसने बताया कि हाँ मैं जॉब कर रही हूँ और मेरी डिलीवरी के दिन करीब हैं। तो उसने कहा कि तुम रेस्ट क्यों नहीं करती। तो उसने कहा कि मेरी जॉब से मुझे सैलरी ज्यादा नहीं मिलती और मैं अच्छे हॉस्पिटल में नहीं जा सकती, इसलिए मैं नौकरी कर रही हूँ कि मैं कुछ पैसे बचा लूँ और किसी अच्छे हॉस्पिटल में अपना केस करवा लूँ। ठीक है, अब जाहिर है उस मुआशरे में बाप तो बेटी का खर्चा उठाता नहीं है, ठीक है, अक्सर तो मतलब यही नहीं कि भाई इस औरत का बाप मर गया होगा, नहीं, वहां पे तो यही ज्यादा मामलात ऐसे ही होते हैं कि बाप जो है वो एक सर्टन एज तक बच्चों का खर्चा उठा भी लेते हैं, अगर अगर उठा लेते हैं तो उस एज के बाद तो फिर बिल्कुल भी नहीं उठाते। ठीक है, तो भाई जो है वो भी बहन के साथ आमतौर पर ऐसा मामला नहीं करते, और जो है वो बेटे हैं वो भी अपने माँ को छोड़ छाड़ करके फिर उसके बाद अपनी जिंदगी में लग जाते हैं, तो माँ का भी ख्याल नहीं करते। और शौहर जहां तक है, शौहर आमतौर पर तो होता ही नहीं है, शौहर के बगैर ही गुजारा हो रहा होता है, लेकिन अगर शौहर होता भी है तो ऐसा निजाम बना हुआ, जाहिर है गुनाहों की वजह से, अल्लाह की नाफरमानी की वजह से, ऐसा निजाम बना हुआ कि भाई हर एक ने अपना खुद ही करना है, शौहर साहब भी अपनी कमाई अलग और बेगम साहबों को अपनी कमाई अलग। ठीक है, वो तो हमारे यहाँ जो बाकियात दीन की बच गई हैं, बाकियात, ठीक है, जो दीन की बच गई हैं हमारे मुआशरे के अंदर, जिसको के भी खत्म करने की भरपूर कोशिशें हो रही हैं, ठीक है, अभी तक खत्म कर नहीं पाए हैं, लेकिन कोशिशें कर रहे हैं खत्म करने की उन बाकियात को। बाकियात का मतलब ये कि दीन तो हमारे यहाँ से भी तकरीबन खात्मे पर ही है, लेकिन उसके असरात जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी कुछ कुछ मौजूद है। ठीक है, तो उन असरात की वजह से हमारे मुआशरे के अंदर औरत को जो है वो संभाला जा रहा है, उसको इस तरह से जो है ना वो खुद जा करके अपने पांवों पे खड़े होकर के जो है ना वो कमाना नहीं पड़ता। जिन लोगों ने बिल्कुल ही बाकियात को भी खत्म कर दिया, तो वहां पे वो यही कहते हैं कि खुद कमाओ, खुद खाओ, अपने पैरों पे खड़ी हो, डिग्री हासिल करो, करियर अपना बनाओ और खुद अपने मसाइल को खुद ही हल करो। ठीक है, लेकिन अमेरिका जो है वो तो हमसे आगे है ना, हम तो उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं ना, तो वो हमसे आगे है, तो वहां पर औरत को उन्होंने आमतौर पर ऐसे ही कर दिया है कि भाई खुद ही कमाओगी तभी जो है वो तुम्हारी हॉस्पिटल के बिल्स तुम्हें खुद ही पे करने होंगे। ठीक है, तो इसने कहा कि जी मैं इसीलिए नौकरी कर रही हूँ कि मैं कुछ पैसे बचा लूं और किसी अच्छे हॉस्पिटल में अपना केस करवा लूं। तो उसने पूछा कि अच्छे हॉस्पिटल में कितना खर्चा आता है, तो उसने कहा कि $5,000 खर्चा आता है। ठीक है, अब ये जो वेटर्स वगैरह होती हैं, इनके पास तो कोई बड़ी अच्छी सी इंश्योरेंस वगैरह नहीं होती है ना, तो खुद ही कैश के ऊपर ही फिर पेमेंट करनी होती है। तो जब वो वेटर्स उसको खाना खिलाकर बर्तन वापस लेकर गई, तो उस औरत ने उसको एक लिफाफा दिया और उसके ऊपर उसने लिखा कि इसको तुम घर जा करके खोलना। तो वेट्रेस जब घर गई और घर जाकर लिफाफा खोला, तो उसमें $5,000 का चेक लिखा हुआ था और साथ लिखा हुआ था, इट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ माई लाइफ टू हेल्प अदर्स। अब ये वेट्रेस जो थी ना, तो उसका खाविंद वो मर्द था कि जिसने वो फिक्रा इस औरत को कहा, तो जैसा हम करेंगे वैसा ही हमारे साथ मामला होगा। ठीक है, तो ये जो दुनिया के उसूल है ना, ये अल्लाह ताला हर जगह चलाते रहते हैं, ये सिर्फ मुसलमान मुआशरे में खाली नहीं चलाते, बल्कि ये अल्लाह ताला के उसूल हैं, ये जो है वो काफिर मुआशरे के अंदर भी अल्लाह ताला के उसूल जो है वो चलते रहे। अब इंसान के ऊपर होता है कि वो अगर मानता है अल्लाह ताला के उसूलों को तो फिर वो मोमिन बन जाता है, और जो अल्लाह ताला के उसूलों को नहीं मानता वो काफिर बन जाता है। ठीक है, लेकिन अल्लाह का उसूल तो चलता रहता है ना, अल्लाह का उसूल जो है वो सूरज निकलेगा तो रोशनी आएगी। अब ये सिर्फ मुसलमान मुल्क में तो रोशनी ही नहीं आती ना सूरज की, ठीक है, और दिन गुजरेगा फिर रात आएगी, तो भाई ये खाली जो है वो जो अल्लाह को अल्लाह मानते हैं, जो अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करते, जो अल्लाह के नबी को नबी मानते हैं, तो खाली उनके लिए सूरज निकलता है और उनके लिए जो है वो रात होती है और दिन होता है, ऐसा तो नहीं है, बल्कि काफिर के लिए भी वही दिन रात का साइकिल चल रहा होता है, वही जो है वो खाने पीने का साइकिल चल रहा होता है, वही जो है वो हत्ता के टिट फॉर टैट वाला साइकिल भी काफिर के लिए भी दुनिया के अंदर चल ही रहा होता है। ठीक है, तो इस वजह से ये मामलात हर जगह ऐसे ही रहते हैं, तो जैसा हम करेंगे वैसा ही हमारे साथ मामला होगा। मोमिन और काफिर में फर्क क्या है? जन्नत का, जहन्नम का, आखिरत का फर्क। क्या काफिर को आखिरत में कुछ नहीं मिलेगा, मोमिन को आखिरत में मिलेगा। दुनिया के अंदर तो भाई दोनों का निजाम तकरीबन एक जैसे ही होता है, तकरीबन एक जैसे ही होता है, काफिर के साथ भी वही सारे मामला चल रहे होते हैं, मोमिन के साथ भी वही सारे मामला चल रहे होते हैं, थोड़े थोड़े फर्क के साथ। बाकी तो फरमाते हैं कि देखें कि इस मर्द ने अल्लाह की रजा के लिए उसकी मदद की थी। अभी हजरत जो है वो अपने जाहिर मस्जिद में बैठे होंगे, दिल में भी अल्लाह की याद, हर वक्त जो है वो अल्लाह का तस्करा, तो हजरत जो है वो यहाँ पर भी यही कह गए, क्योंकि जो दिल में होता है वही जुबान पे आता है ना, कि उस मर्द ने अल्लाह की रजा के लिए इसकी मदद की थी। ठीक है, तो ये जो दिल में था वो जुबान पर आ गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हजरत को पता था कि उस बंदे ने जो है ना वो अल्लाह की रजा के लिए इस औरत करी, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हजरत आलमुल गैब नहीं थे, ठीक है, कि हजरत को उसके दिल के हालात पता था कि उसने अल्लाह की रजा की खातिर ये काम किया, ठीक है, और हजरत ऐसा सोचते भी नहीं है, हजरत की ऐसी कोई बात नहीं है कि हजरत जो है कहें कि अच्छा काफिर भी अल्लाह की रजा के लिए काम करते। तो यहाँ पे एक जुमला हजरत ने फरमा दिया, क्योंकि दिल में अल्लाह 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 हर वक्त दिल में होता है तो जुबान पे भी अल्लाह का नाम आ जाता है ना, कि अल्लाह अल्लाह की रजा के लिए उसने मदद की थी। तो अल्लाह ताला ने उसी औरत के जरिए उसकी बीवी को $5,000 दिलवा दिया। ठीक है, अब ये काम अल्लाह ही ने किया, क्योंकि ये काम तो अल्लाह ही करता है और अल्लाह ही कर सकता है और कोई दूसरा नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये तो चाहे मुस्लिम मुल्क हो चाहे नॉन मुस्लिम मुल्क हो, चाहे मुसलमान बंदा हो चाहे नॉन मुस्लिम बंदा हो, अल्लाह ताला ही जो है ना वो नतज दिलवाते हैं। तो अल्लाह ताला ने उसी औरत के जरिए से उसकी बीवी को $5,000 दिलवा दिए, वरना टायर पंक्चर बदलने के लिए कौन $5,000 देता है। तहम अगर दूसरों के साथ अच्छा करेंगे, हम अगर दूसरों के साथ अच्छा करेंगे तो अल्लाह ताला दूसरों को भी हमारे साथ अच्छा बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो जुमला है ये हजरत ने क्यों फरमाया, ये रिलेशनशिप मैनेजमेंट की बात को जो है ना वो नेल डाउन करने के, मजीद जो है ना एम्फेसाइज करने के लिए हजरत ने यहाँ पे जुमला ये लिखा, ये फरमाया कि अगर हम दूसरों के साथ अच्छा करेंगे, यानी हम दूसरों के साथ अच्छी रिलेशनशिप्स बनाएंगे तो अच्छी रिलेशनशिप्स बनेंगी, अगर हम लोगों के साथ बिगाड़ के रहेंगे और हर वक्त जो है वो कोई ना कोई उल्टी नेगेटिव बात और खामखा की उल्टी सीधी हरकतें करते रहेंगे, तो फिर नेचुरली फिर हमारी रिलेशनशिप जो है वो अच्छी नहीं बन सकेंगी। तो फरमाया कि रिलेशनशिप मैनेजमेंट यानी रिश्तेदारियां निभाने का इंतजाम की सबसे अहम बात ये होती है कि अल्लाह ताला हमें सब रिश्तेदारियों को अच्छे तरीके से रखने की तौफीक अता फरमाए और कयामत के दिन हमें सिला रहमी करने वालों में शामिल फरमाए। वा आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो रिलेशनशिप मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ही बेहतरीन जो हजरत ने हमारे सामने नुकात रखे थे, तो उनका हमने इतने सारे हफ्तों में बिलाखिर पढ़ पढ़ करके बात कर करके मुकम्मल किया। उम्मीद है कि सुनने वालों को इससे कुछ ना कुछ फायदा हुआ होगा, अल्लाह ताला की दाद से उम्मीद रखते हैं। ठीक है, तो इसमें दिल तो ये था कि थोड़ी सी इसकी समरी भी कर लेंगे, लेकिन वक्त मुकम्मल हो गया क्लास का, तो इस वजह से ओवरऑल जो है वो टॉपिक की समरी करने का मौका भी नहीं है। रिकॉर्डिंग्स जो है वो सारी की सारी वेबसाइट के ऊपर पड़ी हुई हैं, कोशिश करेंगे, दिल में इरादा है कि उसकी एक लिस्ट बना करके आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर शेयर कर दें, ताकि जो बाद में ज्वाइन करने वाले लोग हैं उनको भी जो है वो अंदाजा हो जाए कि हाँ भाई ये सारी रिकॉर्डिंग मौजूद है, और हम पूरी शुरू से लेकर के आखिर तक ना भी सुन सकें तो रैंडमली अगर बीच बीच में से भी कुछ सुने तो कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको यकीन मिल जाएंगे जो कि आपके लिए रेलिवेंट हो। किताब में भी ऐसे पॉइंट्स हैं, लेकिन उनके ऊपर मजीद बहुत सारी एक्स्ट्रा बातें भी की गई थी, तो रिकॉर्डिंग्स भी साथ सुन लें। एक बात बस ये आज फिर भी कहना चाहेगा क्लास खत्म होने से पहले, कि हमने इस रिलेशनशिप मैनेजमेंट के टॉपिक के अंदर ना हमने एक चीज को अपनी तरफ से ऐड किया था जो कि हजरत ने इस वाले बयान के अंदर नहीं रखी थी। जाहिर हजरत के पास सिर्फ 1 घंटा होता है बयान करने के लिए, इस वजह से तो हमने इसमें ऐड किया था, जो हजरत वैसे ही हर जगह खुद ही ऐड करते रहते हैं, अल्लाह ताला के साथ रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है, अल्लाह के साथ रिलेशनशिप मैनेजमेंट, तो उसमें एक बहुत ही अच्छा है ना वो एक समरी टाइप की जो है वो नजर से गुजरी, तो दिल चाह के वो आपके साथ हम शेयर कर लें कि अल्लाह के साथ रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो है ना उसके वो अगर 4 पॉइंट्स में सिर्फ 4 नुकात के अंदर बयान कर दिया जाए तो बेहतरीन रिलेशनशिप मैनेजमेंट अल्लाह ताला के साथ हो सकती है, बल्कि मैनेजमेंट का लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए यहाँ पर, बेहतरीन रिलेशनशिप बिल्डिंग अल्लाह ताला के साथ हो सकती है। ठीक है, तो उनमें सबसे पहली चीज क्या है, अल्लाह ताला के साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग सबसे पहली चीज। दिल तो चाहता है आप लोगों से पूछें, सबसे पहली चीज अल्लाह ताला से रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए। अच्छा, यहां पर अपनी बिल्डिंग की भी खाली बात नहीं कर रहे हैं क्या, अपनी रिलेशनशिप बिल्डिंग अल्लाह के साथ, बल्कि आपका बच्चा है, छोटा बच्चा, उसकी अल्लाह ताला के साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग करनी अल्लाह के साथ, तो कैसे करें? आपको अपने छोटे बच्चे बच्ची की अल्लाह के साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग करनी है, ठीक है, या अपनी अल्लाह के साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग करनी है, तो वे विल यू स्टार्ट फ्रॉम, कहां से आप शुरू करेंगे? तौबा, बच्चों को तौबा करवाएंगे। बच्चों को तौबा करवाएंगे आप? अल्लाह ताला के साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग कैसे शुरू करें, बच्चे की और अपनी? ठीक है, इन्होंने कहा दुआ से, इन्होंने कहा सच बोलने से, ठीक है, इन्होंने कहा जिक्र से, तस्करे से, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह का तस्करा। क्या अल्लाह ताला कैसे हैं, क्या तस्करा करेंगे अल्लाह ताला का? अल्लाह की बड़ाई बयान करके। हाँ माशाल्लाह, इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया, शुक्र से, शुक्र से। ठीक है, शुक्र किस चीज का किया जाता है? जो नेमतें आपके पास होती है। नहीं, आपने लिखा नबी पाक के एतमाद बनाते हुए, नहीं, ये नबी अलैहिस्सलाम के साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग होगी। हम अभी हम यहां पर अल्लाह के साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, अल्लाह की नेमतें बताएंगे जो कि उसके सामने मौजूद हैं, जो कि वो परसीव कर सकता है फिजिकली अपने फाइव सेंसेस से, जिन नेमतों को वो देख सकता है, जिन नेमतों के अंदर है वो, ठीक है, और जिनको वो फील कर सकता है, और जिनसे वो फायदा उठा रहा है या उठा रही है आपकी बच्ची, आपका बच्चा, ठीक है। तो उन नेमतों के बारे में बताएंगे कि ये अल्लाह ने दी है, ये अल्लाह की दी हुई है। तो अल्लाह कौन है इन नेमतों का देने वाला? ठीक है, ये जो कुछ है ना, ये जिसने दिया है ना, वो है अल्लाह। ऐसे अल्लाह को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ठीक है, ऐसे अल्लाह को इंट्रोड्यूस करवाएंगे और ऐसे अल्लाह ताला के साथ उसकी रिलेशनशिप बिल्ड करवाएंगे, ठीक है ना। और इसी तरीके से हम खुद अपने लिए भी, कि हम भी जो है ना, वो अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं ना, उनको देख करके अल्लाह ताला से मोहब्बत करते, ठीक है। जब हम इन नेमतों को अल्लाह से जोड़ते हैं, हाँ ये अल्लाह ने मुझे दी है, ये मैंने अपनी मेहनत से नहीं कमाई, ये मुझे मेरे अब्बू ने ला करके नहीं दी, ये मुझे मेरे जो है वो शौहर ने ला करके नहीं दी, या ये मैंने अपनी जो है वो अकल से जो है वो उनको हासिल नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने मुझे दी है, ठीक है। तो ऐसे अल्लाह के साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग जो है ना, ऐसे शुरू होती, ठीक है। अच्छा, ये हो गया शुक्र। तो सबसे पहला काम शुक्र, लइन शकरतुम लअजीदन्नकुम। जैसे जैसे आप शुक्र अदा करते चले जाएंगे ना, वैसे वैसे नेमतें बढ़ती चली जाएंगी। तो जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी तो और शुक्र अदा करेंगे, बल्कि सच्ची बात तो यह है कि शुक्र की तौफीक भी शुक्र करने से बढ़ती है, शुक्र करने से शुक्र की तौफीक भी बढ़ती है और नेमतें, दूसरी वाली नेमतें भी बढ़ती हैं। शुक्र की तौफीक भी सबसे बड़ी नेमत है और दूसरी नेमतें भी बढ़ती हैं, ठीक है। तो अल्लाह से रिलेशनशिप बिल्डिंग का पहला स्टेप शुक्र करना, ठीक है। अच्छा, दूसरा काम, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, ठीक है, अल्लाह ताला को याद रखना। जो कुछ हो रहा है वो अल्लाह से, जो उन्होंने लिखा है ना, अल्लाह से होने का यकीन और अल्लाह के गैर से ना होने का यकीन, ठीक है। तो ये पहले स्टेप में नहीं आएगा, ये तो पहले तो अल्लाह से आपका तारुफ होना जरूरी है ना। तो तारुफ कैसे होगा? नेमतों के शुक्र के जरिए से तारुफ होगा। उसके बाद फिर जब तारुफ हो गया, अब उसको याद रखना, अब उसका ध्यान रखना, ठीक है, कि भाई जो कुछ हो रहा है अल्लाह से हो रहा है और अल्लाह के अलावा गैर से कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, और अल्लाह की अहकामात का ख्याल रखना है मैंने, अल्लाह की रजा का ख्याल रखना है मैंने, अल्लाह की जो है नाराजगी से बचने की तो मैंने कोशिश करनी है। तो फज़कुरूनी अज़कुरकुम, ये रिलेशनशिप बिल्डिंग विद अल्लाह नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। और फिर उसके बाद जब कोई चीज ऐसी फील हो कि नहीं है, उसकी कमी फील हो रही है, ठीक है ना, कोई चीज कम, यानी नेमतें जो थी वो तो हैं, उसके ऊपर तो शुक्र अदा करना है, लेकिन अब मिसाल के तौर पर औलाद नहीं है, बाकी सारी नेमतें औलाद की नेमत नहीं है, अब क्या करेंगे, ठीक है, या जो है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, बाकी सारी नेमतें हैं, सेहत भी है, घर भी है, और रिश्तेदार भी हैं, माँ बाप भी हैं, औलाद भी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, तो अब क्या करें? उदरूनी अस्तजब लकुम, अल्लाह ताला से दुआ, यानी अल्लाह, दुआ किस चीज के लिए की जाती है? वो चीज जो नहीं है आपके पास, उसके लिए दुआ करते हैं ना, ये दुआ जो है ये रिलेशनशिप बिल्डिंग विद अल्लाह, हत्ता के जो अल्लाह से दुआ नहीं मांगता अल्लाह ताला उससे नाराज हो जाते हैं। यानी कोई चीज कमी थी इसके पास, कुछ चीज इसके पास जो थी ना वो उतनी नहीं थी जितनी जो है वो किसी और के पास थी या होनी चाहिए थी जितनी। अब किससे मांग रहा है? बंदों से मांग रहा है, किसी और जरिए के जरिए से जो है वो उसको हासिल करने की कोशिश कर रहा है, अल्लाह से नहीं मांग रहा। अल्लाह ताला कहते हैं उदउनी, तुम मुझसे मांगो, अस्तजब लकुम, मैं तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हें रिस्पॉन्ड करूंगा, या तो कैश की शक्ल में रिस्पॉन्ड करूंगा या काइंड की शक्ल में रिस्पॉन्ड करूंगा, या दुनिया में रिस्पॉन्ड करूंगा, या दुनिया में नहीं भी करूंगा तो आखिरत में तो करूंगा। ठीक है, तो इससे रिलेशनशिप अल्लाह ताला के साथ मजीद मजबूत होती है। तो सबसे पहले शुक्र, दूसरा फिर उसके बाद याद दहानी अल्लाह ताला की तरफ, जिक्र अल्लाह ताला का जिसको कहते हैं, तीसरा फिर अल्लाह ताला से दुआ करना उन चीजों के लिए जो कि आपके पास नहीं है या जो आपके पास कम है, अल्लाह से मांगना। ठीक है ना? और आखिरी चीज अल्लाह के साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग में आखिरी चीज, ये कोई आप में से अगर बता दे तो जबरदस्त, जब तक हम बाकी मैसेजेस जो हमने नहीं पढ़े तो वो पढ़ लेते हैं। क्या लिखा था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर दी हुई नेमत को अल्लाह से जोड़ना। जी बिल्कुल, आपके पास जो कुछ है अल्लाह से, अल्लाह ने दिया, बिल्कुल सही लिखा था आपने भी। यहाँ का बयान सुनकर अब नाशुक्री नहीं निकलती है, और नेमत के बिना तसव्वुर करते हैं तो जिंदगी मुश्किल लगती है,
हेलो,
ये और ज्यादा।
मुझसे बन नहीं रही।
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है आप कुछ फायदा वाला था कबूल फरमा ले, हमसे भी आपसे भी सबसे। तो आखिरी चीज क्या रह गई? ठीक है, यानी शुक्र कर लिया आपने उन एग्जिस्टिंग नेमतों का, फिर उसके बाद फिर अल्लाह ताला से आपका तारुफ बन गया नेमतों के वास्ते से, अब आप अल्लाह ताला को याद रख रही हैं, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, फिर उसके बाद जो है जो चीज आपके पास कम है तो उसके लिए आप अल्लाह ताला से दुआ मांग रही हैं, आखिरी चीज जी माशाल्लाह, ठीक है, इस्तग़फार। किस बात पर इस्तग़फार? अब देखें शुक्र में कोई कमी रह गई, ठीक है, अल्लाह को याद रखने में कमी रह गई, जैसा याद करना चाहिए था नहीं कर सके, ठीक है, अल्लाह ताला से मांगना जैसा चाहिए था वैसा नहीं मांग सके, गलती हो गई ना, गुनाह हो गया ना, अब इसके ऊपर क्या करना है? इस्तग़फार कर, ठीक है, इस्तग़फार कर, सही है। तो अब रिलेशनशिप बिल्डिंग में आखिरी ब्लॉक क्या है? इस्तग़फार, माफी मांग, ठीक है, जो पहले तीन चीजों के अंदर कमी कोताही गफलत हो गई उस पर अल्लाह ताला से माफी मांगते रहना, माफी मांगते रहना, माफी मांगते रहना, ठीक है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा कान अल्लाहु मुअज्जिबहुम वहुम यस्तग़फिरून, कि अल्लाह ताला को क्या मिलेगा अजाब दे करके इस हाल में कि ये अल्लाह ताला का इस्तग़फार कर रहे हैं, अल्लाह ताला से माफियां मांग रहे हैं। ठीक है, इस आयत का शान नुज़ूल है तो वैसे काफिरों के बारे में कि अल्लाह ताला दुनिया में काफिरों को भी अजाब नहीं दे रहे थे जब नबी अलैहिस्सलाम उनके दरमियान है, वो अंतफीहिम, कि आप इनके दरमियान मौजूद हैं, हम कैसे इनको इसी वक्त यहीं पे कैसे अजाब दे दें, इज्तिमाई शक्ल में इनको कैसे अजाब दे दें जबकि आप इनके दरमियान मौजूद हैं। और अगले ही आयत में फरमाया वमा कान अल्लाह मुअज्जिबहुम वहुम यस्तग़फिरून, क्योंकि ये लोग जब काबतुल्लाह का तवाफ करते थे ना तो उस वक्त गुफरानक गुफरानक गुफरानक, ए अल्लाह आपकी मगफरत, ए अल्लाह आपकी माफी, ए अल्लाह आपकी माफी, ये बोलते रहते थे। तो अल्लाह ताला ने इन काफिरों के इस्तग़फार करने के ऊपर, इनकी की वजह से इनके ऊपर से इज्तिमाई अजाब को रोके रखा, ठीक है, और कुरान मजीद में इसका तस्करा किया। तो हम आप तो नबी अलैहिस्सलाम को मानने वाले हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ही हैं, अगर हम माफी मांगते रहेंगे तो अल्लाह ताला को क्या मिलेगा हमें अजाब दे करके ना, ठीक है। तो ये गोया के पूरी पिक्चर कंप्लीट हो गई, शुक्र से शुरू हुई, इस्तिग़फार पे खत्म हुई, और इनके दरमियान दो काम कौन से? जिक्र और दुआ। इससे अल्लाह के साथ रिलेशनशिप मैनेज, मैनेजमेंट नहीं बल्कि रिलेशनशिप बिल्डिंग, ठीक है, मैनेजमेंट का लफ्ज तो फिर वहां इस्तेमाल किया जाता है जहां पे आपको आगे से भी कुछ कमी कोताही का खदशा हो और अपनी तरफ से जो है वो आप उसको मैनेज कर रहे हो, राइट। अल्लाह ताला के साथ ऐसा मामला नहीं है कि आपको मैनेज करना पड़े, अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से कोई कमी कोताही नहीं करनी है, हमने तो अपनी तरफ से बेहतरीन मामला करना है और अपनी कमी कोताही को खत्म करना है या कम करना है। अल्लाह ताला की तरफ से कोई कमी कोताही नहीं है, तो इस वजह से मैनेजमेंट यहाँ पर मतलब प्रॉपर नहीं होगा, बिल्डिंग गलत प्रॉपर होगा। इन्होंने क्या लिखा, शुक्र करना है अल्लाह को, हमेशा याद रखना है, फिर दुआ करनी है अल्लाह ताला से। किस चीज पे दुआ करनी है, जो चीजें आपके पास नेमतें नहीं है या कम है उनके लिए अल्लाह ताला से दुआ करनी है, ठीक है। और फिर आखिर में जो कमी कोताही रह गई शुक्र करने में या याद करने में अल्लाह ताला को या अल्लाह ताला से मांगने में जो कमी कोताही रह गई उसके ऊपर इस्तगफार कर, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, जिसने भी ये चीज लिख करके भेजी है अल्लाह ताला उसको बेहतरीन जगह खैर अता फरमाए। बहुत ही माशाल्लाह काम की बात उसके अंदर थी। हम इंशाल्लाह ग्रुप के ऊपर भी आप हमारे साथ शेयर कर लेंगे ताकि याद रखना भी आसान हो जाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह, सलाम वालेकुम।